ओम शांति। हम गीत सुन रहे थे कि हम परमात्मा से ही पूछते हैं, हम जाने या तुम जाने, हमें तुमसे कितनी प्रीत है। दुनिया जिसको ढूंढ रही, हम उनके कितने करीब हैं, वो हम पर कुर्बान है। दुनिया जिसको ढूंढ रही थी, परंतु हमें सबको भगवान ने ढूंढ लिया। नशा है ना, सबको परमात्मा ने ढूंढ लिया। हम सब उसके बन गए। हम सब उसके बनने के बाद भी एक खोज भगवान को थी। वो कौन सी जानते हैं? कि भगवान वो योगी आत्मा को ढूंढ रहे थे कि मेरा प्रसाद ऐसे योगी आत्माएं ही बना सके जिससे वो भगवान से अटूट लगन जोड़ सके, अपने विकर्ण दग्ध कर सके। भगवान के बनने के बाद भी खोज भगवान को थी, तो वो खोज हमारे आत्म प्रकाश भाई जी ने पूरी की। आप सब जानते हैं ना, किस नाम से जानते हैं? टोली वाले आत्म प्रकाश भाई जी। जो भगवान का प्रसाद हमें मिलता है, मिलने के बाद आंखों पे लगा के कण कण खा करके उसमें से कण कण औरों को बांटते हैं, है ना? तो प्रसाद का इतना महत्व बढ़ाने वाले योगी तो आत्मा, सबको योग में उड़ाने वाले हमारे आत्म प्रकाश भाई जी। वैसे तो कोई भंडारा या प्रसाद बनाने की सेवा अगर कहते हैं तो सोचते हैं कि कुछ और काम नहीं आता होगा, या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो किचन संभालेंगे। परंतु आप यूनिवर्सिटी के MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, उसके बावजूद भी आपने भगवान के यज्ञ की टोली बनाने की जिम्मेवारी ली। और आपकी विशेषताएं तो अनंत हैं। हम बचपन से आपकी क्लास सुनते आए हैं। हम तो हमेशा कहते उड़ने वाले उड़ाने वाले आत्म प्रकाश भाई जी, उनके नाम से ही हम उड़ने की आत्मा उड़ने का अभ्यास करते हैं। आप देश विदेश में सेवाएं करते हैं और हेडक्वार्टर में आप यूथ विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, अनेक सेवाओं को संभालते हुए भी सदा खुशनुमा, बड़ा उमंग उत्साह में रहते हैं। तो अभी हम आपसे सुनेंगे योग की गहराई की, विशेष योग की गहराई की बातों को जानेंगे और अनुभव करेंगे। और साथ से योग चलता रहेगा। 7:30 जिनको उठ के जाना है वो धीरे से योग युक्त होके उठ के जाएं, क्योंकि ऐसे न कहें कि हम पूरा ही करें, क्योंकि वहाँ भी टाइम हो जाएगा, आधा आधा ग्रुप जाएगा। फिर लौट के 8:30 यहाँ आना भी है, नेक्स्ट रामनाथ भाई जी की क्लास भी है। तो अभी हम सुनेंगे आत्म प्रकाश भाई जी से।
ओम शांति। योग के गहराई की कुछ सूक्ष्म बातें। क्योंकि वर्तमान समय बाबा का इशारा है, योग की गहराई को बढ़ाओ और योग में स्थित होने के समय को बढ़ाओ, अर्थात योग के क्वालिटी को और क्वांटिटी को बढ़ाते चलो। इसके लिए योग के गहराई की बातों को जानना बहुत जरूरी है। हम हर रोज योगाभ्यास करते हैं, हर रोज मुरली सुनते हैं, फिर भी जब हम व्यवहार में आते हैं तो कभी कभी थोड़ा रोब आ जाता है, कोई फीलिंग आ जाती है, अर्थात विकारों के अंश वंश अभी भी आत्मा में बाकी हैं। उन अंशों को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए आवश्यकता है ऐसे गहराई का योगाभ्यास करने की। शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की। इसलिए हम कुछ गहराई की बातें, सूक्ष्म बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। योग के गहराई को बढ़ाने के लिए पहली सूक्ष्म बात है, बहुत अच्छी गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात खुद में इतना खो जाएं जो देह का भान मिटता जाए, एकदम बॉडीलेस स्टेज। क्योंकि जितनी गहराई आत्म अभिमानी स्थिति की होती है उतनी गहराई परमात्म अभिमानी स्थिति की होती है। इसलिए विधि पूर्वक आत्मा का अभ्यास करते रहें और उसकी गहराई को बढ़ाते चलें। हमारा लक्ष्य है 100% आत्मा का भान और 0% देह का भान, ये हमारी मंजिल है। और हमारा सबसे जास्ती मोह अपने देह से होता है, इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, जितना उतना हिसाब है। जितना देह से न्यारा होते जाते हैं, बॉडी की कंपनी को त्यागते जाते हैं, उतनी गॉड की कंपनी हमें मिलती जाती है। बॉडी की कंपनी ने हमें नीचे गिराया और गॉड की कंपनी हमें ऊपर उठाती है, ऊपर वाला हमें ऊपर उठाता है। इसलिए गुप्त ही गुप्त हम अभ्यास करते रहें, देह में रहते हुए विदेही स्थिति का गहराई से अभ्यास बढ़ाते रहना। क्योंकि जितना हम खुद में खो सकते हैं उतना ही खुदा में खो सकते हैं। जितनी गहराई आत्म अभिमानी स्थिति की होती है उतनी ही गहराई परमात्म अभिमानी स्थिति की होती है। इसलिए यही तपस्या हमें करना है जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा। विदेही स्थिति के अभ्यास को मालिश पॉलिश बाबा रोज करते रहे हैं। इसलिए पहला नंबर बाबा ने लिया। दूसरी सूक्ष्म बात है, योग की गहराई को बढ़ाने के लिए गहराई की परमात्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाते रहना जरूरी है। गहराई की परमात्म अभिमानी स्थिति अर्थात परम धाम में हम बाबा के पास जाकर बैठे और बहुत नजदीक से, बहुत समीपता से बाबा के स्वरूप को दिव्य नेत्र से निखारते जाएं कि कैसे बाबा की पर्सनैलिटी है, कैसे बाबा का मन है। बहुत सतोपदान संकल्पों का रचना करता रहता है। बुद्धि कितनी विशाल है, बुद्धि कितनी दिव्य है, बुद्धि कितनी भव्य है, संस्कार कितने रॉयल हैं, कितने जेंटल संस्कार हैं, कैसी गजब की पर्सनैलिटी बाबा की हैं। ऐसे बहुत नजदीक से हमें देखना है और अनुभव करते जाना है गहराई से, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। तो जितना समीपता से हम बाबा को देखते हैं, बाबा को अनुभव करते हैं, उतनी गहराई से बाबा को हम जानने लगते हैं। जितना जो गरीब होता है उतना वो परमात्मा से करीब होता है। दुनिया में गरीब किसको कहते हैं? जिसको रहने का भी घर नहीं होता है उसको गरीब कहते हैं। तो जितना हम देह से न्यारे अर्थात किनारे करते हैं, गरीब हो जाते हैं, उतना परमात्मा से करीब अर्थात समीपता की अनुभूति करते जाते हैं। हमारे और बाबा के बीच में एक छोटी सी दीवार है देहाभिमान की। इस दीवार को हम हटा देते हैं, भुला देते हैं, तो भगवान के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें होती है। इस दीवार को हटा दो, भुला दो, गला दो, तो एकदम समीपता की निशानी अनुभूति हमें होती रहेगी। इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली आत्माएं वो हैं जो हमेशा परमात्मा के समीप रहते हैं, बुद्धि के द्वारा करीब रहते हैं, कंबाइन होकर रहते हैं, वो बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो भगवान के नैनों में नूर बनकर समय रहते हैं वो सबसे भाग्यशाली आत्माएं इस संसार में कहलाते हैं। जो बहुत प्यारी चीज होती है वो आंखों में बसती है। तो जब भगवान हमारे आंखों में बस जाता है, भगवान हमारे नैनों का नूर बन जाता है, तो भगवान के नैनों के नूर भी हम बन जाते हैं। इसलिए गहराई से परमात्म अभिमानी स्थिति को बढ़ाते रहना जरूरी है। तीसरी सूक्ष्म बात है, योग की गहराई बढ़ाने के लिए जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं, हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। जब मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती हैं, तो परमात्म मिलन का मजा ही कुछ और आता है, बढ़कर आता है। योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, उस सत्ता से हम मिलन मना रहे हैं। तो उसके लिए जब हमारा मन और बुद्धि खुशी से और नशे से भरपूर होता है, तो परमात्म मिलन का आनंद बहुत बढ़कर चढ़कर हमें अनुभव होता है। बहुत गहन अनुभव परमात्म मिलन में हमें होते हैं। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है, सारे दिन भर में हमें समान के सिंहासन पर बैठे रहना है, डटे रहना है। भगवान ने हमें ये सिंहासन दिया है, हमने बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत की, द्वापर युग से बड़ी मेहनत से हमें ये समान का सिंहासन दिया है। बाबा हमें उस सिंहासन पर बिठाते हैं और माया हमें उतारने का प्रयास करती है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, जो भी सभा में बैठे हैं, होनहार राजे महाराजे रॉयल फैमिली की आत्मा, ताली बजाओ जरा एक बार अपने लिए। एक एक आत्मा का करोड़ों में सिलेक्शन किया है और स्वयं भगवान ने किया है, किसी अधिकारी ने या मनुष्य ने नहीं किया है। बहुत रॉयल आत्माएं हम सभी हैं। तो उस रॉयल्टी को अपनाने के लिए बाबा ने हमें ये समान का सिंहासन हमें दिया है। तो जो भी समान के टाइटल बाबा ने दिए हैं, उस टाइटल को हमें अपने जीवन में स्वरूप बनकर लाना है। तो आत्मा में वो नशा, वो मस्ती, वो खुमारी ऑटोमेटिक धारण होती जाएगी। क्योंकि जितने रॉयल आत्माएं होते हैं, जितने ऊंची क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, उतना जास्ती नशा उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है। ब्रह्मा बाबा को हमेशा समान रहता था, मैं नंबर वन नारायण बनने जा रहा हूं, मैं सारे संसार की जो प्रजा है उस प्रजा का मैं पिता हूं। शुरू दिन से अंतिम दिन तक बाबा इस समान में रहे और नंबर वन रॉयल इस संसार में बने। ताली बजाओ जरा। मैं किसका बच्चा हूं जो सारे संसार में नंबर वन है, ब्रह्मा बाप, उसका मैं रॉयल बच्चा हूं। बड़ा हमें नशा होना चाहिए। शेर का बच्चा शेर होता है, तो हम सभी नंबर वन ब्रह्मा बाप के मुखवंशावली बच्चे अडॉप्टेड हैं, है ना? तो समान के सिंहासन पर बैठे रहने से सारा दिन ईश्वरीय नशे में हम झूमते रहते हैं और नाचते रहते हैं। जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से घटिया दुनिया रखा क्या है इसमें। 5000 वर्ष तो हमने इसको यूज किया, असार संसार है, कोई सार नहीं है, नीरस दुनिया है, कोई रस नहीं है। वो हमारा पारसनाथ है, सर्व रसों का भंडार बाबा है, है ना? ये गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस हमारा परमधाम है। गेस्ट हाउस कितना भी बढ़िया हो, सोने के चमचमाते दरवाजे खिड़कियां अलमारियां हो, आखिर तो गेस्ट हाउस ही है। रेस्ट हाउस हमारा परमधाम है, इसलिए मस्ती में हमें मस्त रहना है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती, है ना। दुनिया जिसके मुट्ठी में है, दुनिया जिसके इशारे पर चल रही है, वो मेरा बाप है। इसलिए सारे दिन भर में हमें ईश्वरीय नशे में मस्त रहना है, चूर रहना है, ठीक है। नशा उल्टा क्या है? शान। ईश्वरीय नशा आत्मा की शान है, आत्मा की जान है और आत्मा की आन और बान है। ईश्वरीय संतान की ड्रेस है ईश्वरीय नशा, वह हमें सारे दिन भर में पहन कर रखना है। तो जब भी हम योगाभ्यास में बैठेंगे तो वो ईश्वरीय नशे के आधार पर योगाभ्यास में बहुत गहन, बहुत गहराई के सुंदर अनुभव होते रहेंगे। और तमाम समय बाबा का इशारा है, अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। जब भी हम पांडव वन में आते हैं, ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं शांति स्तंभ के रूप में। बाबा गए नहीं, बाबा सामने खड़े हैं। किस रूप में? श्रेष्ठ स्थिति के रूप में। हमें भी ऐसी बाप समान, शांति स्तंभ समान, अचल अडोल स्थिति बनाना है, ऊंची स्थिति बनाना है। चौथी सूक्ष्म बात है, योग की गहराई को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन हमारे दिल में परमात्म प्यार बढ़ता रहे, उसकी गहराई बढ़ती रहे। हमारा प्यार बाबा से है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम ठगी करते हैं बाबा से। दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं कहां गिरा, कोई कहां गिरा। बाप से प्यार है, चाचा से प्यार है, घर से प्यार है, कार से प्यार है, उससे प्यार है। बाबा मैंने आपके लिए रखा है बच्चा के थोड़ा। बाबा कहते ये झूठा प्यार मुझे दे रहे, मैं केवल प्यार का सौदागर हूं। तुम्हारे पास है क्या? किराए का मकान लेकर तो बैठे हो। तो मैं केवल प्यार का सौदागर हूं, मुझे प्यार का सौदा करना है और कुछ नहीं करना है। 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर कहता है मैं केवल प्यार का सौदागर हूं और पक्का सौदागर हूं। जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा। तो जितना हम बाबा को गहराई से जानते हैं उतना दिल का सच्चा प्यार बाबा के तरफ हम ट्रांसफर करते रहते हैं। और जितना प्यार बाबा के प्रति बढ़ता जाता है उतनी योग की गहराई बढ़ती जाती है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो बाबा में और हमारे में हजारों मीलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार कराता है। इसलिए कहते जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुट जाती हैं। जैसा प्यार, जितना प्यार बाबा से होता है उतनी तार बुद्धि की जुटी रहती है। तो हमें दिन प्रतिदिन प्यार के परसेंटेज को बाबा के तरफ बढ़ाते जाना है। कैसे पता चलेगा मेरा बाबा से प्यार बढ़ रहा है या नहीं? कैसे पता चलेगा? हाँ जी, कृष्ण के समान ग्लोब पर बैठे रहो, टांग पर टांग कृष्ण बैठा है। अगर इस धरती पर, ग्लोब पर किसी व्यक्ति के तरफ या वस्तु के तरफ मेरी बुद्धि बार बार जाती है तो समझ लो मेरा प्यार वहां शेयर हो रहा है। किसी व्यक्ति से, किसी वैभव से मुझे प्यार शेयर नहीं करना है। जो शेयर करते हैं वो शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए संगम माना केवल भगवान के संग में रहने का ये युग है, केवल परमात्मा के साथ प्यार शेयर करने का ये युग है। इसलिए सुदामा के पास मुट्ठी चावल था और कुछ नहीं था, ऐसे हम सभी सुदामा हैं, हमारे पास केवल दिल का प्यार की पूंजी बची हुई है, वो हमने बाबा के पास सौंपना है बड़े सच्चाई से, समझा। योगाभ्यास करना अर्थात परमात्मा से प्यार करना, और है क्या योग, लेकिन वो कठिन लगता है हमें, क्योंकि हमारा प्यार इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। अभी हमें प्यार को बटोरना है और एक बाबा के तरफ फोकस करना है, गहराई से बाबा के तरफ ट्रांसफर करते जाना है, समझा। क्योंकि हमने देखा आत्माओं के साथ प्यार शेयर करते रहने से कितना माया ने हमें लताड़ा, फुटबॉल बना के हमें क्या पीटा, किधर का नहीं रखा। हमें अभी केवल बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ना है, प्यार को शेयर करते जाना है ना कि नहीं। बाबा के साथ केवल प्यार शेयर करना है। अगर आप प्यार के बारे में 5 बातें रियलाइज करेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे, तो भूल से भी किसी से प्यार नहीं करोगे। बोलो जानना चाहते हैं, बोलो ना भाई, पक्की बात। कभी भूल से भी किसी व्यक्ति या वैभव से प्यार नहीं करोगे, मेरी गारंटी है। लिखो पहली बात, आत्मा और परमात्मा के प्यार का कॉन्ट्रास्ट हमारे सामने क्लियर होना जरूरी है। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से हमने केवल कड़वे अनुभव किए और बहुत माया ने हमें लताड़ा, कहीं का नहीं रखा। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आत्माओं के प्यार में कितने कंडीशन, कितने कॉम्प्लिकेशंस होते। किसी से प्यार होता है, चिट्ठा लिख के देते, इतनी मेरी कंडीशन है, कबूल है तो बढ़ो आगे, नहीं तो मुझे कोई लेना देना नहीं। परमात्मा के प्यार में कोई कंडीशन है ही नहीं। केवल बाबा कहते हैं, सच्चे दिल पर मुझे सच्चाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हेरा फेरी मुझे नहीं चाहिए। सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। डंडा मेरे पास है, धर्मराज बाबा कहता है। बोली बोली माताएं देखो सभा में बैठी है, भोलानाथ का दिल जीत कर वो बैठी है, भाई ताली तो बजाओ हमारे बूढ़ी माताओं के लिए। भाई कहते हैं माताएं बहुत भोली होती हैं, उनको घर का भेद कभी नहीं बताना, पट से जाके पड़ोसी को बता दे। अरे वो भोलानाथ ने बोली माताओं को ही पसंद किया और उनके सिर पर ही ज्ञान का कलश रखा, भाइयों के सिर पर नहीं रखा है। भाई बोली बोली माताओं का ही दिल भोलानाथ पसंद करता है, अंदर बाहर साफ। भाई डुप्लीकेट पर्सनैलिटी वाले होते हैं, है ना। बस मुझे सच्चाई चाहिए, बाबा कहता है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। आत्माओं का प्यार में स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्यार भी नहीं करता है। ये सारा संसार स्वार्थ के डोर से बंधा हुआ है। जहां स्वार्थ स्वार्थ समाप्त होता है, वहां सब कुछ समाप्त, कोई रिश्ते नाते सब समाप्त होते हैं। केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, कितना अंतर है, कितना अंतर है देखो. मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, देता है और भूल जाता है. ठीक है, अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है, वो प्यार का सागर है, और ये गागर खाली वो उछल रही, क्या प्यार करेंगे उनसे, है ना, आत्माओं से क्या प्यार करेंगे. और चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है और चढ़ती कला की अनुभूति कराता है. सारे कल्प में एक ही बार चांस मिलता है आत्मा को प्योर बनाने का और आत्मा को चढ़ती कला की अनुभूति कराने का. आत्माओं से प्यार होता है, शरीर भी इम्प्योर तत्व से बना हुआ है, आत्मा में भी इम्प्योरिटी के अंश वंश से क्या प्यार करेंगे उनसे. केवल परमात्म प्यार ही हमें चढ़ती कला की अनुभूति कराता है और प्योर बनाता है, ऊपर उठाता है. ठीक है ना. और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर लेके जाता है. आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है, क्या प्यार करेंगे उनसे. जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती है, थर्ड फ्लोर है. होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान है वो परम धाम, तो परमात्म प्यार हमें वहां लेके जाता है. आत्माओं का प्यार तो हमें यही भटकाता रहता है. तो इन पांच बातों को अगर हम रियलाइज करते हैं तो कभी भी भूल से भी किसी व्यक्ति वैभव से हम प्यार शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि पारसनाथ केवल एक बाबा का ही गायन है. पारसनाथ वही एक नाथ हैं जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं. एक सेठ था, वो कहता है पारस को लोहे को लगाने से सोना बन जाता है, मुझे पारस मिल जाए ना मजा आ जाएगा. वो पारस उसने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, उसको पारस नहीं मिला. पारस यहां जो बैठे हैं, इस सारी महान आत्माओं को पारस मिला है, पारस मिला है. पारस बाबा आयरन एजेड आत्मा को टच करता है योगाभ्यास से, तो ये गोल्डन एजेड आत्मा बनती है. असली पारस बाबा है, है ना. इसलिए बाबा से ही हमें प्यार करना है. सर्व संबंधों की अनुभूति हमें बाबा से करना है संगम युग में. क्यों जरूरी है ये भाई? कोई प्रॉब्लम होता है, मां से लगाव है, पति से लगाव है, बच्चे से लगाव है, वो संबंध बाबा से अनुभव करना जरूरी है. लेकिन सर्व संबंध बाबा से अनुभव करने की क्या आवश्यकता है बोलिए. हाँ जी, ध्यान वहां जाएगा बार बार. हाँ जी, कुछ गहरी बात बताओ, क्यों सर्व संबंधों की अनुभूति केवल बाबा से, भगवान से करना जरूरी है? क्योंकि ये संबंध हमें धोखा भी देते हैं. हाँ जी, एक ही अविनाशी संबंध है. हाँ जी, हाँ, सुख शांति मिलती है, अशांति मिलती है, बहुत अच्छी बात है. इसकी बहुत गहराई की बात यह है कि सारे कल्प में हमारे 84 जन्म होते हैं. ठीक है, आधे जन्म मेल के और आधे जन्म फीमेल के होते हैं, ये तो बाबा ने बता दिया है. लेकिन 84 जन्मों में हमारे अलग अलग रोल होते हैं. जो रोल मिलता है वो हमें अच्छी तरह से बजाना होता है, इसलिए वो संस्कार हमें अभी आत्मा में भरना है घर जाने के पहले. कैसे? भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते करते हैं। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही गाय के स्तन के पास दूध पीने के लिए दौड़ता है, कोई उसको ले जाता नहीं, उसमें संस्कार भरे होते हैं। ऐसे सर्व संबंधों के संस्कार आत्मा में हमें भरना है, भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करते हुए। ये है उसके पीछे राज, ठीक है ना। बाकी दूसरी बात तो जो लगाव हमारा है किसी संबंध से, वो संबंध तो करना ही करना है, वहां से बुद्धि को हटाना है, बाबा से जोड़ना है, ठीक है। पांचवी सूक्ष्म बात, योग की गहराई को बढ़ाने के लिए बाबा को जब हम देखते हैं, बाबा पर हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ते रहना जरूरी है। जितना बाबा के पास हमारा भान ट्रांसफर होता है, उतनी योग की गहराई हमारी बढ़ती है। तो कितने वर्षों से ज्ञान और योग कर रहे हैं, 10 साल से 20 साल, क्या प्रोग्रेस है आपकी? भाई मैं बाबा के पास 50-60% भान से बैठ सकता हूँ, बैठ सकती हूँ परम धाम में बाबा के पास। अभी और क्या करना है, 40% जो बाकी है वो और ट्रांसफर करना है। ब्रह्मा बाबा को झोपड़ी में कोई भी मिलने के लिए जाता था, बच्चिया बाबा की आंखों से लगता था बाबा बिल्कुल यहाँ जीरो हैं, और परम धाम में शिव बाबा के पास 100% भान से हाजिर है। वहां आंखें बाबा की बोलती थी बाबा यहाँ तन से है, मन से वहां है 100%। इसलिए हमें योग की गहराई को बढ़ाना है, अर्थात परम धाम में बाबा के पास हमारे कॉन्शियस को, हमारे भान को बढ़ाते जाना है। उसको कहते हैं योग की गहराई बढ़ाते जाना। अभ्यास करते 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 चेकिंग करते रहें और चेंजिंग भी करते रहें। क्या मेरी प्रोग्रेस है? मैं बाबा के पास 80% या 90% भान से बैठ सकती हूँ आत्मा, अभी और मैंने अभ्यास करना है 10% और बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है। इसको कहते हैं योग की गहराई बढ़ाना। क्योंकि जैसे स्विमिंग करते हैं, शरीर हमारा पानी में गहराई में जाता है, उतना तैरने का आनंद आता है, ऐसे बुद्धि हमारा या भान जितना बाबा की याद में जास्ती परसेंट भान से जाता है, तो योग के बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें होते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं परमात्म प्यार में लीन हो जाओ, समा जाओ, डूब जाओ, शिव मैं बन जाओ। जब तक लीन नहीं होते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बनती है। आत्मा में जो भी कीचड़ा है, गंदगी है, वो सागर में समा जाती है और आत्मा एकदम साफ सुथरी हो जाती है। ज्ञान सूर्य की तपत में बहुत जास्ती भान से हम रहते हैं तो जो भी कचड़ा है वो सूर्य की तपत में भस्म हो जाता है, आत्मा एकदम क्लीन बन जाती है। और उसमें विशेष एकाग्रता की आवश्यकता है बढ़ाने की। योगाभ्यास में योग को शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योग के रूप में अनुभव करना चाहते हैं तो एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। बिना एकाग्रता ऐसी शक्तिशाली अनुभूति हमें नहीं होती है। एकाग्रता माना 100% बान हमारा शिव बाबा पर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा पर एकाग्र हो, 1% भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तब ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती है। अभ्यास करते 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 ऐसी स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। हर कल्प हमने प्राप्त की है, केवल उसको हमने दोहराना है, रिपीट करना है। हम बाबा के बच्चों ने ऐसी एकाग्रता के साथ योग की साधना किए हैं, उसकी बहुत सुंदर यादगार भक्ति मार्ग में शास्त्रों में लिखी हैं। बोलिए कौन सी है वो यादगार? हम बच्चों ने की है और किसी ने नहीं की, बोलिए। उसकी सुंदर यादगार है गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक बिंदु पर धनुष बाण को तीर को मारना ये धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए क्या किया, वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया। उस पंछी की आंख में जो ब्लैक आई बॉल है, जो पुतली है, उस पर आपको तीर मारना है, लक्ष्य दिया। सहपाठी को बोला इधर आओ, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ पंछी भी दिखाई दे रहा है, वो इसकी आंख भी दिखाई दे रही है, वो डाल भी दिखाई दे। अच्छा कोई बात नहीं, अर्जुन आओ, क्या दिखाई दे रहा है आपको? मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, केवल वो काली बिंदी, ब्लैक आई बॉल, वही नजर आ रहा है। फिर गुरुजी ने कहा तीर मारो, तीर उसने मारा, लक्ष्य को भेदा और पास हुई, तानर हो गया। कोई अर्जुन फर्जुन होकर नहीं, सारे अर्जुन यहाँ बैठे हुए हैं, सारे अर्जुन यहाँ बैठे हैं। हमने अभ्यास किया और लोगों को लिखने के लिए माल मसाला मिल गया, अभ्यास हमने किया और उनको कहानियां लिखने के लिए माल मसाला मिल गया। तो कहने का मतलब है केवल हमें अभ्यास को बढ़ाना है, प्रैक्टिस को बढ़ाना है, तो ऐसी एकाग्रता की शक्ति को गहराई से हम बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि स्पष्ट बात है, कागज मेरे हाथ में है, धूप में इसको रखा है, 10 दिन से रखा है, नहीं जल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, उसको मुझे जलाना है, तो सूर्य की रोशनी में कागज को ऊपर लेंस पकड़ते हैं, लेंस पर वो किरणें पड़ती हैं, तो लेजर किरणें वो पड़ती हैं और वो लेजर किरणें कागज पर एक बिंदु पर पूरी एकाग्रता के साथ पड़ती हैं, तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अग्नि का रूप लेती हैं और उसमें पेपर जल जाता है। थोड़ा भी लेंस हिल जाएगा तो भी पेपर नहीं जलेगा। ऐसे जब हम ज्ञान सूर्य बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं, तो ज्ञान सूर्य की जो शक्तियों की किरणें हैं बुद्धि रूपी लेंस से जब पास होते हैं तो लेजर किरणें बनती हैं और वो लेजर किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती हैं, तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, योग की ज्वाला धधकने लगती है और उसमें हमारे जो कड़े संस्कार हैं, कठोर संस्कार हैं, इतने जन्मों के हमारे विकर्म हैं, वो पल भर में भस्म हो जाते हैं उस ज्वाला मुखी योगाभ्यास में। तो केवल ये अभ्यास की बात है, गहराई से सूक्ष्मता से उसको बढ़ाना है, हमें चेक करते जाना है, मेरा भान इधर उधर न जाए, केवल बाबा जो सुप्रीम स्टार हैं, सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट हैं, उस पर मुझे पूर्णतया अपना अटेंशन को फोकस करना है। केवल अभ्यास की बात है, ठीक है। चेकिंग और चेंजिंग बुद्धि को चेक करें और चेंज करें, कहीं इधर उधर चली जाती है, चेक करो चेंज करो। दूसरे शब्दों में वॉच करो, कैच करो और मैच करो। एक सेकंड में बाबा से कनेक्शन मिलेगा और लंबे समय तक आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। और शक्तिशाली योगाभ्यास आपका बढ़ता जाएगा। जब भी हम बैठक का योग करते हैं अमृत वेले या नुमा शाम के समय, ऐसी एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करते जाना है। चलते फिरते सारे दिन भर में फरिश्ता स्थिति की अनुभूति या रूहान की अनुभूति हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे नए विक्रम नहीं बनेंगे। और दूसरा लाभ ये होगा, जब बैठक के समय ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति हम करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार हम हो जाएंगे, वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। जब भी बैठेंगे एक सेकंड में बाबा से कनेक्शन जुड़ जाएगा। कनेक्शन जुड़ते ही शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू। बाबा मुरली में बार बार कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, किसी देवदारी को याद नहीं करना। सारा दिन हमारे पीछे पड़ा रहता है, क्यों भाई, क्या बात है, किसी को याद नहीं करना है, केवल मुझे याद करना है। फिर क्यों याद करे, आपको बोला ना भाई, उससे लाभ अच्छे है, विक्रम भस्म होता है, बैटरी चार्ज होती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, ठीक है, ये तो लाभ है। लेकिन क्यों याद करना जरूरी है उसको ही, क्यों देहधारी को याद करना जरूरी नहीं है, कुछ सोचा होगा आपने, क्या उसके पीछे सीक्रेट है? हाँ जी, मैंने इस पर बहुत मंथन किया, बाद में जवाब मिल गया उसका, केवल इस संसार में एक ही बाबा शक्तियों के सागर है, शक्तियों के स्रोत हैं, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो एक ही सोर्स है। और जब बाबा को याद करते हैं तो आत्मा में शक्ति आती है, ये यूनिवर्सल लॉ है। एनर्जी इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाइयर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। जब बाबा को याद करते हैं तो शक्तियां मिलती हैं, और किसी व्यक्ति वैभव को याद करते हैं तो शक्तियां खर्च होती है, नष्ट होती है, दिवाला निकलता है। और इस संसार में सबसे जास्ती हमारा शुभ चिंतक केवल बाबा है। बाबा, ताली बजाओ जरा एक बार अच्छे तक। बाबा चाहता है हर एक मेरा लाल माला माल हो जाए, शक्तियों के खजाने से भरपूर हो जाए, और अंत में अनेक आत्माओं को बांटता रहे, ऐसा शुभचिंतक बाबा है। इसलिए बार बार हर मुरली में हमें इशारा देते रहता है, केवल मुझे याद करो, उसमें ही तुम्हारा कल्याण है, केवल मुझे याद करो, ये उसके पीछे राज है। कोई भी आत्मा को याद करते हैं तो शक्तियां चली जाती है। और यही समय है, सारे कल्प में यही समय है शक्तियों का स्टॉक जमा करने की। इसलिए हमें जो बुद्धि इधर उधर जाती है उसको स्टॉप करके बाबा से जोड़नी होगी, तभी हमारे पास शक्तियों का स्टॉक होगा। तो इस पर हमें खास ध्यान देना है, इतना हो सके बस बाबा ही बाबा हमें रटते रहना है, और बाबा से ही बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते रहना है, अगर हम अपने शुभ चिंतक हैं तो। याद उल्टा क्या है, दया। दया के सागर के बच्चे हैं हम, और बाबा को याद नहीं करेंगे तो खुद पर भी नहीं दया करें तो औरों पर क्या करेंगे। जितना याद करते हैं उतनी शक्तियां जमा करते हैं और स्वयं पर दया करते हैं, जितनी स्वयं पर दया करते हैं उतनी औरों पर भी दया कर सकते हैं। नहीं तो मैं खुद पर भी नहीं दया कर रही हूं, क्योंकि इधर बाबा कहते कमाई करो, कमाई करो, खूब कमाई करो, का आगे क्या है, कहा आगे क्या है, माई माया को भी बेचता जाओ, इसको कमाई नहीं करने देना, मेरे पास तो 8 ही सीट है और 108 ही है, 16,000 किसको किसको मैं बैठाऊं। इसलिए इधर कहता है कमाई करो और इधर माई माया को बेचता है, इसको कमाई करने नहीं देना। अभी देखो ये 50-60-100 साल में ही ऐसे साधन बने हैं टाइम किलर। ये जो भी साइंस के साधन है, यूट्यूब है, ये जो भी क्या बोलते हैं साइंस के साधन कौन से हैं, ये क्या वायरलेस के बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं टावर नहीं होता है तो क्या बोलते हैं ना, वाईफाई नहीं है। तो कहने का मतलब ये बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें ही अभी बहुत फैल गई है, क्रिएट कर दी है माया ने। और बाबा कहते हैं इधर कनेक्शन जोड़ो और माया कनेक्शन तोड़ती रहती है और संघर्ष में हम सारा दिन फंसे रहते हैं, है ना भाई। इसलिए हमें माया कुछ भी करे, कितना भी अपोजिशन करे, हमने उसको नहीं देखना है, बाबा से कनेक्शन जोड़ते ही रहना है, ठाकुर बनना है। तो एक ठिकाने पर बुद्धि को ठिकाना दे दो और खजाने लूटते जाओ तो ठाकुर बन जाएंगे। बड़े वाले पेट वाले सेठ होते हैं ना, उनके पास बहुत माल होता है, तो सेठ बनना है तो बुद्धि को ऊपर सेठ कर दो तो खजाने आपके पास मिलते जाएंगे, माला माल होते जाएंगे। और बुद्धि कहीं अपसेट हो गई तो फिर कनेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना भाई। इसलिए जितना हो सके याद का चार्ट लिखते जाना है, क्योंकि ये कमाई करने का समय है, कितनी कमाई हो रही है मन और बुद्धि के द्वारा और कितना समय मेरा वेस्ट हो रहा है, सारा हिसाब का किताब मुझे रखना है, समझा। इसलिए बाबा कहते चार्ट्स मेक्स यू स्मार्ट, क्योंकि अटेंशन की पावर ये चार्ट हमारी बढ़ाता है, क्योंकि ये मन बुद्धि आत्मा रूपी माँ के बच्चे हैं, ये बड़े शैतान बन गए हैं द्वापर युग से, माया ये जो बच्चे हैं माया के साथ रहे और जो भी खजाने हमारे पास थे सारे लुटा दिए। अभी इनको दोनों को ही हमने ट्रेन करना है और उनको भगवान के साथ में रखना है और खोए हुए खजाने पुनः पाना है, इसलिए उनको ट्रेनिंग देना है। तीसरा कोई भी नहीं, यही दो बच्चे हैं मन और बुद्धि। इसलिए हमें क्या करना है, इन दोनों बच्चों से बड़े प्यार करना है और उनको ट्रेनिंग देना है और बाबा के संग में लंबे समय तक उनको रखना है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं बुद्धि हमारी जितनी विशाल बनती है, दिव्य बनती है, दुरंदेशी बनती है, उतना हमारा योगाभ्यास बढ़ता जाता है। इस योग को राज योग कहते हैं और दूसरा नाम बुद्धि योग इसको कहते हैं। कनेक्शन बुद्धि से जुड़ता है और मन मनाभव अर्थात संकल्प के माध्यम से ऊर्जा आत्मा में आती है और संकल्प के माध्यम से ही ऊर्जा जाती है, खर्च होती है। इसलिए मन मनाभव का मंत्र देखो, दुनिया में आप देखेंगे जो जो साधना करते हैं ना, वो हाथ पर कपड़ा रखते हैं और हाथ में माला लेते हैं, राम 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 राम, राम शिव 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 जपते, क्यों भाई, किसकी यादगार है ये। हम बाबा के बच्चों ने इस देह रूपी कपड़े के अंदर बैठकर मन के द्वारा शिव बाबा को रटते रहे, याद करते रहे, हर पल हर घड़ी बाबा की याद में रमते रहे, उसकी यादगार वो लोग मना रहे हैं। कपड़ा रखते हैं, एक कपड़े की बात नहीं, ये देह रूपी कपड़ा माना, इस देह में रहते भी हमें बाबा का याद का जाप करते जाना है, अजपा जाप करते जाना है और खुद को माला माल करते जाना है। इसलिए चार्ट रखना बहुत जरूरी है। 73 में पहली बार मैं हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिल रहा था। हिस्ट्री हॉल माना यहां बाबा है, मैं यहां बैठा था नीचे। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, दृष्टि देने के बाद पहला महावाक्य उच्चारण किया, अगर ईश्वरीय जीवन में सदा आगे बढ़ना चाहते हो तो याद का चार्ट लिखते जाना। अब एक साल का बच्चा था मैं, क्या याद का चार्ट होता है किस पता नहीं, तो टीचर्स को पूछता, टीचर भी कहती आप जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे, बताओ तो सही ना, कोई बताने के लिए तैयार नहीं। जब 76 में यहां मैं आया समर्पित होने के लिए, मैंने दादियों के क्लासेस मुरली के आधार पर बहुत अच्छा चार्ट मेंटेन किया, हर घंटे का अलग अलग एक्सरसाइज का चार्ट मेंटेन किया और उसको मेंटेन करने लगा। एक साल मेंटेन किया तो 77 में हिस्ट्री हॉल में ही बाबा से मिलना, तो बाबा ने कहा आपका योग का चार्ट अच्छा है और आपका नंबर पांडवों में आगे है। एक साल के बाद ही तुरंत। तो कहने का मतलब है पूरी लगन के साथ अगर हम अच्छी तरह से चार्ट मेंटेन करते हैं तो योगाभ्यास को अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ना। ओम शांति। अभी थोड़ा ताली बजाओ जरा अच्छी तरह से। थोड़ा आगे आ जाओ, खुला खुला बैठो अच्छी तरह से। अभी हम आधा घंटा एकदम खो जाएंगे, अपनी दुनिया में मस्त हो जाएंगे। ठीक है भाई, पूरी गहराई के साथ सुंदर योग की अनुभूति। हाँ जी, योग का चार्ट रखने के लिए पहले पहले क्या करना है, हर घंटे की अलग अलग एक्सरसाइज करना है, समान का अभ्यास करना है, शरीर स्थिति का अभ्यास करना है, मनन चिंतन का करना है, परिस्थ स्थिति का अभ्यास करना है, रोहयान का अभ्यास करना है, पहले अलग एक्सरसाइज करना है, बाद में केवल प्योर चार्ट बनाना है। एक घंटे में मैंने कितने मिनट बाबा को याद किया। धीरे धीरे क्या होता है, मन और बुद्धि को हम अपने कंट्रोल में लेते हैं, नियंत्रण में लेते हैं, अनुशासन में लेते हैं, फिर बाबा से कनेक्शन जोड़ने में वो मदद करते हैं। इसलिए पहले पहले एक्सरसाइज के द्वारा मन और बुद्धि को कंट्रोल में लेना है, बाद में प्योरली योग का चार्ट रखना है। ठीक है, तो सीधा बैठेंगे सभी।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छे से हमें अनुभूति कराई। आपकी क्लास नहीं थी परंतु साथ साथ हम अनुभव कर रहे थे। आपने परमधाम में कहा सब परमधाम की अनुभूति कर रहे थे, विदेही स्थिति की अनुभूति कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। सब योग में बैठेंगे परंतु आधे लोग उठ के 7:15 बजे जाएंगे, धीरे से डिस्टर्ब करे बिगर।
ठीक है, चलो सीधा बैठो ऐसा। अना ठीक है, ठीक है अना। ओम शांति। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक रुकुटी के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता का प्रकाश, निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने पवित्रता का सुंदर ताज धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के प्रकंपन चारों फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। जिसके गीत सारा संसार गाता है वो भगवान मेरे भाग्य के गीत हर रोज मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस बेहद ड्रामा में हीरो एक्टर हूं। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्टर से हर रोज मुझे डायरेक्शन श्रीमत के रूप में मुरली में मिलता ही रहता है। जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ बनता जा रहा है। यह शरीर तो मेरा मकान है, यह शरीर तो मुझ आत्मा का वस्त्र है। यह शरीर तो मुझ आत्मा का वाहन है। मेरा असली स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्रा सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यार। मेरे हरेक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर पाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा के बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। मेरे सिखिलते बच्चे इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जो भक्ति मार्ग में गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव वो वायदा निभाने मैं आया हूं। प्यारे बच्चे इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। लाडले बच्चे अभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो और पिता का निस्वार्थ प्यार मज से अनुभव करो। मेरा आज्ञाकारी वफादार परमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का प्यार अनुभव करो। मेरे दिल तक तनसीम बच्चे कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सर्वशक्तिमान निराकार भगवान साकार में आकर मुझे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर ब्रह्मा तन द्वारा मुरली के माध्यम से मधुर शिक्षाओं से मुझे सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। सचमुच मुझे अपने टीचर पर नाज है। मेरे नैनों के नूर बच्चे कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मैंने दिए हुए मनमना भव महामंत्र का अच्छा जाप करते रहो। सारे दिन भर मेरी ही चित्र छाया में चलते रहो, पलते रहो और वरदानी मुहूर्त बनते रहो। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं, क्या कहने मेरे भाग्य का। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों सुनहरी लाल ही लाल सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम, मीठा परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा के सुंदर छवि को निहार, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलारा बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य सुपिता से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। यज्ञ की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुश नो में पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इस साकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई आ रही हूं, वाया सूक्ष्म वतन वापिस आ रही हूं। और इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूं। ओम शांति।